दूसरा इतिहास अध्याय दो। अध्याय दो पद एक और दो। और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया, इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुख्य गिनती करके ठहराए। इस तरह असंख्य लोग सामान जमा करने के लिए लगाए गए ताकि सुलेमान का भवन और परमेश्वर का मंदिर बनाया जा सके। अध्याय दो पद तीन से लेकर छह तक। तब सुलेमान ने सोर के राजा हूराम, वो अपने आप को हीराम कहता था, के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसे ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूं कि उसे उसके लिए पवित्र करूं और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊं और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए, और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाया जाए। इसराइल के लिए ऐसा ही सदा की विधि है, और जो भवन मैं बनाने पर हूं वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसी की इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए, वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाऊं? दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ ये है, मैं परमेश्वर के निवास के लिए भवन नहीं बनवा रहा हूं। परमेश्वर तो स्वर्ग में भी नहीं समा सकता। परमेश्वर का भवन बनाने में मेरा उद्देश्य ये है कि इस भवन में आकर लोग परमेश्वर के लिए बलिदान अर्पित करें। मनुष्य परमेश्वर को किसी विशेष स्थान में सीमित कर देना चाहता है, ये गलत है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर किसी और स्थान की अपेक्षा उस स्थान में है। आप परमेश्वर को स्थानीय नहीं बना सकते। सर्वोच्च गगन भी परमेश्वर को पूरा नहीं पड़ता है, दाऊद कहता है, भजन संहिता 139 7 और 8 पद। तेरे सामने से किधर भागू? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते और ना ही परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं। फिर भी कई बार परमेश्वर के विषय में सोचते हैं, प्रभु हम तेरी उपस्थिति में यहां एकत्रित होकर बहुत आनंदित हैं। जी हां, परमेश्वर की उपस्थिति में आना अति उत्तम है। जरा सोचो, आप आराधना में जाने से पहले अपनी पत्नी पर चिल्ला रहे थे, परमेश्वर तो वहां भी था। ऐसा नहीं है कि जब हम आराधनालय में प्रवेश करें तो अकस्मात ही परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। परमेश्वर तो हर जगह उपस्थित रहता है। आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते, इसलिए ये सोचना कि परमेश्वर किसी विशेष स्थान पर है एक गलत धारणा है। ये हमारी सीमित बुद्धि की परिणाम है कि हम परमेश्वर को स्थान विशेष में खोजते हैं। मैं चर्च जा रहा हूं ताकि मैं आज परमेश्वर की निकटता में आ सकूं। मैं तो जब जंगलों में होता हूं तब भी परमेश्वर की निकटता अनुभव करता हूं। जब मैं रेगिस्तान में रात को चलता हूं तब भी परमेश्वर की निकटता में होता हूं। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी स्थान विशेष में परमेश्वर का आभास अधिक होता है, परंतु सच्चाई यही है कि परमेश्वर सदा आपके साथ है जहां कहीं भी आप हैं। ऐसा नहीं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि हम कहीं भी हो, हमें उसकी उपस्थिति का आभास होना चाहिए। मैं समझता हूँ एक मसीह के लिए यही आवश्यक है और मसीह जीवन में हमें परमेश्वर की प्रभावी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए। और जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तब वो वहाँ उपस्थित होगा। जिस समय स्थिति बहुत खराब होने लगे उस समय भी वो वहाँ है। जब आप बहुत अकेले हो जाते हैं तब भी वो वहाँ है। जब सब लोग आपको भुला दें तो भी वो आपके साथ है। हमें उसकी उपस्थिति का आभास की आवश्यकता है, परंतु ये अनुभूति का विषय है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता हूं, यदि मेरा मन उसकी उपस्थिति का खोजी हो। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हमें पवित्रता या धार्मिक जीवन या इस तरह के उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि मैं उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक हूं तो उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीता हूं। पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इस प्रकार मैं ये जान जाता हूं कि मुझे ऐसा जीवन जीना है जो उसे पसंद आए। मैं ये भी जानता हूं कि जो भी मैं करता हूं वो उसे छिपा नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन एक खुली किताब है। परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुलेमान इस सच्चाई को जानता था, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर हम तेरे लिए कोई भवन नहीं बना सकते कि तू वहीं आकर रहें और हम उस भवन में आकर तुझसे भेंट करें। मैं कौन हूं कि तेरे लिए घर बनाऊं? उसने हूराम के राजा को भी लेबनान के देवदार की लकड़ियों को भेजने के लिए पत्र में लिखा, मैं एक भवन बनाना चाहता हूं जहां हम भली और धूप चढ़ाया करें, ना कि परमेश्वर के रहने का कोई स्थान। वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, परंतु एक ऐसा स्थान जहां आकर हम उसके लिए बलिदान चढ़ा सके। इसलिए उसने कुशल मनुष्य भेजने को कहा जो वहां आकर निर्माण के कार्यों की देखभाल करें, जो नक्काशी और हर प्रकार की वस्तुकला में निपुण हो, क्योंकि जो भवन में बनाने पर हूं वो अचंभे के योग्य होगा। उसने ये समझौता किया, तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जव, 20,000 बत दाक मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। अध्याय 2:10, 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं, 20,000 कोर जव, एक बत करीब 30 लीटर होता है। अध्याय 2:10 में आगे लिखा है, 20,000 बत दाक मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। इस प्रकार वो बहुत बड़ा वार्षिक शुल्क उन निपुण मनुष्यों को देने को तैयार था। अध्याय 2:11 से लेकर 15 तक, तब सोर के राजा हूराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हूराम ने ये भी लिखा कि धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वो यहोवा का एक भवन और अपना राज भवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को, अर्थात हूराम अभी को भेजता हूं, जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था, और वो सोने चांदी पीतल लोहे पत्थर लकड़ी बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। और मेरे प्रभु ने जो गेहूं जव तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। इस प्रकार सौदा पूरा हुआ। अध्याय 2:16। और हम लोग जितनी लकड़ी को तुझे प्रयोजन हो उतनी लेबनोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। उन्होंने लेबनोन से देवदार की लकड़ी काटी बेड़े बनवाकर समुद्र में बहा दिए और भूमध्य सागर से बहाकर इसराइल के तट पर पहुंचाया जो उस समय की केवल एक बंदरगाह थी जो जापा में थी। जापा से ढोकर वे उन्हें यरूशलेम को ले गए जो करीब 40 मील दूर है। ये बड़ा कार्य था और निश्चय ही उन्हें 70,000 मनुष्यों की आवश्यकता थी जो देवदार की लकड़ियों को ढोने का काम करें।